एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। ज्ञान गोष्ठी में सभी का अभिनंदन। आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसने न सिर्फ खेल जगत में बल्कि सोचने के तरीकों में भी आप कह सकते हैं एक भूचाल ला दिया था, माइकल लुइस की मनी बॉल, द आर्ट ऑफ विनिंग एन अनफेयर गेम।
बिल्कुल, और पहली नजर में एक कहानी लगती है 2002 की एक बेसबॉल टीम की, ऑकलैंड एथलेटिक्स।
एस कहते हैं उन्हें।
हाँ, एस कहते हैं।
लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। मतलब ये इस बारे में है कि कैसे लीक से हटकर सोचा जाए, कैसे पुरानी सोच पर सवाल उठाएं, और कैसे डेटा की जो अनदेखी ताकत है ना, उसका इस्तेमाल करके कम पैसों में भी बड़ी कामयाबी मिल सकती है।
सही बात है, और इसका संदेश तो आज भी उतना ही, शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी लगता है ना।
बिल्कुल, मतलब है ये सिद्धांत सिर्फ बेसबॉल के मैदान तक ही तो सीमित नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
चाहे वो बिजनेस की दुनिया हो, या जॉब्स ढूंढने का तरीका हो, या फिर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के फैसले, ये सोच तो हर जगह काम आ सकती है।
सही कहा।
तो चलिए पता लगाते हैं कि मनी बॉल आखिर है क्या चीज, और इसने दुनिया को देखने का नजरिया कैसे बदला, ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे अपना लक्ष्य, अपना गोल सही तरह से सेट करके हम अपनी भूमिका, अपना रोल ज्यादा प्रभावी बना सकते हैं। पर कहानी में गोता लगाने से पहले मुझे लगता है लेखक माइकल लेविस के बारे में थोड़ी बात करना जरूरी है।
हाँ बिल्कुल, वो एक अमेरिकी लेखक हैं, फाइनेंशियल जर्नलिस्ट रहे हैं, और उनकी सबसे बड़ी खूबी शायद यही है कि वो मुश्किल से मुश्किल विषयों को भी बहुत दिलचस्प कहानियों में बदल देते हैं।
एकदम, और उनका अपना जो अनुभव है वो इस किताब के लिए बिल्कुल सटीक बैठता है।
हाँ, मतलब प्रिंसटन और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई, फिर वॉल स्ट्रीट पर बॉन्ड बेचने का काम।
हाँ, लायर्स पोकर तो उनकी पहली जबरदस्त हिट थी।
बिल्कुल, और वॉल स्ट्रीट ने उन्हें सिखाया कि बाजार कैसे काम करते हैं, कैसे लोग कई बार अतार्किक फैसले लेते हैं, और कैसे सिस्टम में छुपे हुए मौके, या कह लीजिए अक्षमताएं, ढूंढी जा सकती हैं।
और यही नजरिया, यही चीज उन्हें बेसबॉल की दुनिया में भी दिखी।
एग्जैक्टली, उन्होंने पाया कि 90 के दशक के अंत और 2000 की शुरुआत में ये जो पेशेवर बेसबॉल का बाजार था ना,
हाँ,
वो एक तरह से एक अक्षम फाइनेंशियल बाजार जैसा था। मतलब जो पारंपरिक स्काउट्स थे जो खिलाड़ियों को चुनते थे, वो पुराने स्टॉक ब्रोकर जैसे थे। खिलाड़ी कैसा दिखता है, उसका अंदाज कैसा है, अपनी दिल की आवाज पर ज्यादा भरोसा कर रहे थे।
अच्छा, इंट्यूशन पर मतलब।
हाँ, इंट्यूशन पर। जबकि दूसरी तरफ थे ऑकलैंड एस के जनरल मैनेजर बिली बीन और उनके असिस्टेंट, वो वॉल स्ट्रीट के क्वांट्स होते ना।
हाँ, क्वांटिटेटिव एनालिस्ट।
उनकी तरह सोच रहे थे, डेटा का इस्तेमाल करके बाजार की खामियों का फायदा उठा रहे थे। लेविस की यही खासियत है जो इनकी दूसरी किताबों द बिग शॉट या द ब्लाइंड साइड में भी दिखते हैं।
सही है, वो ऐसे अनदेखे पैटर्न और नए आइडिया सामने लाते हैं जो पूरे सिस्टम को हिला देते हैं।
बिल्कुल।
तो फिर मनी बॉल की कहानी आखिर है क्या, मतलब ऊपरी तौर पर देखें तो?
ऊपरी तौर पर देखें तो ये 2002 की ऑकलैंड एथलेटिक्स टीम की कहानी है। उस साल लीग की सबसे कम पैसे वाली टीमों में से एक थे वो।
हाँ, बहुत कम बजट था उनका,
और इसके बावजूद उन्होंने 103 मैच जीते। सोचिए, उतने ही जितने उस साल की सबसे अमीर टीम न्यूयॉर्क यैंकीज ने जीते थे।
कमाल है, और वो लगातार 20 मैच जीतने वाला रिकॉर्ड भी तो था।
हाँ, वो अविश्वसनीय रिकॉर्ड भी बनाया, अमेरिकन लीग रिकॉर्ड था वो उस वक्त।
पर किताब का असली मकसद सिर्फ ये अंडरडॉग कहानी सुनाना नहीं है, है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी तो एक जरिया है एक बड़ी क्रांति को समझाने का।
कौन सी क्रांति?
स्टेटिस्टिकल एनालिसिस की क्रांति, सांख्यिकीय विश्लेषण की।
हाँ हाँ।
जिसने बेसबॉल में सदियों से चली आ रही पारंपरिक सोच को चुनौती दी। लेविस हमें दिखाते हैं कि बेसबॉल स्काउटिंग और मैनेजमेंट की दुनिया कैसे भरी हुई थी पक्षपात से, व्यक्तिगत पसंद नापसंद से,
अतार्किक सोच से।
अतार्किक सोच से,
मतलब एक ऐसा बाजार जहाँ चीजों का मूल्यांकन सही ढंग से नहीं हो रहा था।
एग्जैक्टली। किताब असल में ये सवाल उठाती है कि आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ, कैसे एक छोटे शहर की कम बजट वाली टीम लगातार बड़ी अमीर टीमों का टक्कर दे पाई।
और इसका जवाब मिलता है टीम के जनरल मैनेजर बिली बीन के जरिए।
हाँ हाँ, जिन्होंने दशकों पुरानी स्काउटिंग परंपरा को पूरी तरह से नकार दिया। वो परंपरा जो खिलाड़ी के लुक, उसके पोटेंशियल और स्काउट्स की सब्जेक्टिव राय पर टिकी थी।
बिल्कुल, बीन और उनकी टीम ने तो एक पूरी तरह से अलग रास्ता चुना।
एकदम अलग, डेटा आधारित एनालिटिकल अप्रोच, जिसे बेसबॉल की दुनिया में सेबरमेट्रिक्स कहते हैं।
सेबरमेट्रिक्स, हाँ।
तो किताब का मूल तर्क ये है कि सफलता सबसे महंगे या सबसे आकर्षक दिखने वाले खिलाड़ी खरीदने में नहीं है।
अच्छा, तो फिर किसमें है
सफलता का राज? है जीत के लिए जरूरी सांख्यिकीय घटकों को पहचानना, खास तौर पर ऑन बेस परसेंटेज यानी ओबीपी,
मतलब एक खिलाड़ी कितनी बार आउट हुए बिना बेस पर पहुंचता है।
हाँ, और फिर उसे सबसे कम कीमत पर हासिल करना।
हाँ,
ये कहानी है वहां वैल्यू खोजने की जहां कोई और देख ही नहीं रहा था।
तो ये अपने लक्ष्य को बदलने की कहानी है, खिलाड़ी खरीदना नहीं बल्कि जीत खरीदना।
बिल्कुल सही, और जब लक्ष्य बदला तो भूमिका भी बदल गई।
चलिए अब कहानी के और अंदर चलते हैं। सब कुछ शुरू होता है 2001 की सर्दियों में। ऑकलैंड एस के लिए वो एक मुश्किल वक्त था।
हाँ, बहुत मुश्किल। उनके तीन सबसे बड़े स्टार खिलाड़ी जेसन जियाम्बी, जॉनी डेमन और जेसन इसरिंगहाउजन टीम छोड़कर चले गए थे।
क्यों? पैसे की वजह से?
हाँ, अमीर टीमें उन्हें इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट दे रही थीं कि एज उनका मुकाबला ही नहीं कर सकते थे। यही एंट्री होती है टीम के जनरल मैनेजर बिली बीन की।
और बिली बीन की अपनी कहानी यहाँ बहुत मायने रखती है ना?
बहुत ज्यादा। वो खुद कभी एक बहुत बड़े स्टार खिलाड़ी माने जाते थे, हाई स्कूल से ही चुन लिए गए थे, एकदम परफेक्ट एथलीट लगते थे।
हाँ, मैंने पढ़ा है तेज रफ्तार, जबरदस्त शॉट, स्काउट्स को उनमें अगला बड़ा सितारा दिखता था।
लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। पेशेवर खिलाड़ी के तौर पर वे बुरी तरह नाकाम रहे।
ओह।
और इसी नाकामी ने उनके मन में ये जो पारंपरिक स्काउटिंग के तरीके थे ना, उन पर शक पैदा कर दिया। उन्हें समझ आया कि खिलाड़ी का दिखना और असल प्रदर्शन ये दो अलग चीजें हो सकती हैं।
अनुभव से सीखा उन्होंने।
हाँ, इस अनुभव ने उन्हें प्रतिभा को आंकने का एक ज्यादा वस्तुनिष्ठ, ज्यादा भरोसेमंद तरीका खोजने के लिए प्रेरित किया। और हाँ, टीम का कम बजट तो था ही,
जिसने उन्हें कुछ नया, कुछ क्रांतिकारी करने पर मजबूर कर दिया।
बिल्कुल, उनकी भूमिका अब सिर्फ टीम चलाना नहीं रही बल्कि एक तरह से सिस्टम को हैक करना बन गई थी।
तो ये नया तरीका, ये नई सोच आई कहां से?
यहां लेविस हमें मिलवाते हैं बिल जेम्स से। और दिलचस्प बात यह है कि जेम्स बेसबॉल की दुनिया के कोई अंदरूनी आदमी नहीं थे।
अच्छा।
वो एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड थे और शौकिया तौर पर बेसबॉल पर लिखते थे, विश्लेषण करते थे।
अरे वाह।
लेकिन उन्होंने अपने डेटा आधारित काम से खेल की कई पुरानी धारणाओं को चुनौती दी।
कैसे? क्या कहा उन्होंने?
उन्होंने अपने पब्लिकेशन बेसबॉल एब्स्ट्रैक्ट में तर्क दिया कि पारंपरिक आंकड़े जैसे बैटिंग एवरेज या आरबीआई, रन बैटेड इन, उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना उन्हें माना जाता है।
तो फिर क्या महत्वपूर्ण था उनके हिसाब से?
उन्होंने जोर दिया ऑन बेस परसेंटेज पर, ओबीपी पर। उनका मानना था कि बल्लेबाज का सबसे जरूरी काम है आउट न होना, किसी भी तरह बेस पर पहुंचना।
अच्छा, ये तो सोचने वाली बात है।
हाँ, बिली बीन को जेम्स का काम मिला और फिर पॉल डेपोटेस्टा, हार्वर्ड से पढ़े एक युवा सहायक।
हाँ, उनका जिक्र भी है किताब में।
उन्होंने इन सिद्धांतों को एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी में बदला। मुख्य आइडिया ये था, बेसबॉल का बाजार ओबीपी जैसे आंकड़ों को कम आंक रहा था। और दिखने में अच्छे लगने वाले स्किल्स जैसे तेज दौड़ना या गेंद चुराना, इनको जरूरत से ज्यादा महत्व दे रहा था। यही उन्हें बाजार की अक्षमता दिखी।
और यहीं से शुरू होता है मनी बॉल का असली खेल। फिर उन्होंने टीम कैसे बनाई?
यहीं लेविस हमें उन खिलाड़ियों की कहानियां सुनाते हैं जिन्हें एज ने अपने नए सांख्यिकीय मॉडल के आधार पर चुना। ये वो खिलाड़ी थे जिन्हें बाकी टीमें किसी न किसी कमी की वजह से नजरअंदाज कर रही थी।
उन्हें मजाक में बेमेल खिलौनों का द्वीप भी कहा गया था शायद।
हाँ, आइलैंड ऑफ मिसफिट टॉयज। जैसे स्कॉट हेडबर्ग, वो एक कैचर थे लेकिन हाथ में चोट लगी तो कैचिंग करियर खत्म माना जा रहा था।
तो एज ने क्या किया?
एज ने उन्हें साइन किया फर्स्ट बेस खेलने के लिए। सोचिए, ये पोजीशन उन्होंने पहले कभी खेली नहीं थी।
कमाल है। सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका ओबी भी अच्छा था?
सिर्फ इसीलिए। उनकी बेस पर पहुंचने की क्षमता असाधारण थी।
और चैड ब्रैडफोर्ड, वो अजीब स्टाइल वाले पिचर।
हाँ, चैड ब्रैडफोर्ड नीचे से हाथ घुमाकर फेंकते थे, सबमरीन स्टाइल। स्काउट्स को भद्दा लगता था, कहते थे ये टिकेगा नहीं, लेकिन उनके आंकड़े, वे अविश्वसनीय रूप से असरदार थे।
और डेविड जस्टिस का किस्सा भी दिलचस्प है।
हाँ, डेविड जस्टिस एक उम्रदराज स्टार खिलाड़ी थे जिन्हें उनकी पुरानी टीम यांकीज छोड़ने को तैयार थी, यहां तक कि उनकी तनख्वाह का कुछ हिस्सा देने को भी राजी थी।
लेकिन एज ने उन्हें ले लिया
क्योंकि उनके विश्लेषण ने दिखाया कि जस्टिस के आंकड़े, खासकर ओबीपी, अभी भी टॉप लेवल के थे। ये सब बिली बीन के दृढ़ विश्वास को दिखाता है।
मतलब उन्होंने जानबूझकर उन खिलाड़ियों को चुना जिन्हें पारंपरिक सोच ने नकार दिया था।
बिल्कुल, अपनी ही टीम के स्काउट्स, मैनेजर और पूरे बेसबॉल जगत की राय के खिलाफ जाकर सिर्फ डेटा पर भरोसा किया। उनका लक्ष्य साफ था, जीत के आंकड़े खरीदना, न कि सुंदर दिखने वाले खिलाड़ी।
कहानी फिर लौटती है 2002 के उस ऐतिहासिक सीजन पर जो मनी बॉल सिद्धांत की असली परीक्षा थी।
हाँ, शुरुआत थोड़ी धीमी रही, टीम हारी भी, लेकिन फिर टीम ने लय पकड़ी और इतिहास रच दिया। लगातार 20 गेम जीतने का रिकॉर्ड,
अमेरिकन लीग के इतिहास की सबसे लंबी जीत की स्ट्रीक।
हाँ, उस समय की ये स्ट्रीक इस बात का सबूत थी कि सिद्धांत काम कर रहा था। कम बजट पर बनी बेमेल समझे जाने वाले खिलाड़ियों की टीम एक अजेय मशीन बन गई थी।
लेकिन अंत थोड़ा निराशाजनक रहा था, प्लेऑफ्स में हार गए थे वो।
हाँ, प्लेऑफ के पहले ही राउंड में हार गए। लिविस इसे भी ईमानदारी से दिखाते हैं, ये बताने के लिए कि सिस्टम आपकी जीतने की संभावनाओं को बढ़ाता है, लेकिन छोटे नॉकआउट मुकाबलों में किस्मत के रोल को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता।
ये भी जरूरी बात है।
फिर किताब का अंत 2002 सीजन के बाद के प्रभाव पर नजर डालता है।
हाँ, वो बॉस्टन रेड सॉक्स वाला किस्सा।
एग्जैक्टली।
हाँ,
अमीर टीम बोस्टन रेड सॉक्स ने बिली बीन को रिकॉर्ड तोड़ पैसों पर अपने यहाँ जनरल मैनेजर बनाने की पेशकश की, लेकिन बीन ने मना कर दिया। ऑकलैंड में ही टिके रहे।
लेकिन फिर रेड सॉक्स ने क्या किया?
यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। रेड सॉक्स ने बीन को तो नहीं खरीदा, पर उनके दर्शन को अपना लिया।
अच्छा।
उन्होंने बिल जेम्स को सलाहकार बनाया और 2004 में मनीबॉल सिद्धांतों का इस्तेमाल करके एक ऐसी टीम बनाई जिसने वर्ल्ड सीरीज जीती
और उनका वो 86 साल पुराना श्राप भी टूट गया।
हाँ, कर्स ऑफ द बैम्बिनो। ये मनीबॉल सोच का सबसे बड़ा प्रमाण था।
जो कभी ऑकलैंड एस की अजीब सोच मानी जाती थी, वो अब बेसबॉल का नला नियम बन गई।
खेल हमेशा के लिए बदल चुका था।
तो बिली बीन का लक्ष्य गोल, सिस्टम को साबित करना, वो पूरा हुआ और उनकी भूमिका, रोल एक क्रांतिकारी की बन गई।
बिल्कुल।
तो इस पूरी कहानी से कुछ बहुत महत्वपूर्ण सबक या विषय उभर कर आते हैं। पहला तो शायद यही है कि स्थापित परंपराओं को चुनौती देना कितना जरूरी है।
हाँ बिल्कुल। सिर्फ इसलिए कि कोई चीज हमेशा से एक खास तरीके से होती आई है, इसका मतलब ये नहीं कि वही सही तरीका है। मनीबॉल ने बेसबॉल की सदियों पुरानी अंदर की आवाज और परंपराओं पर सीधे सवाल खड़े किए।
दूसरा अहम विषय है बाजार की अक्षमताओं को पहचानना और उनका फायदा उठाना।
हाँ, ये असल में अर्थशास्त्र का एक पार्ट है। मनीबॉल दिखाता है कि कोई भी सिस्टम जहाँ इंसान शामिल हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या खिलाड़ियों का बाजार, वहाँ अतार्किक सोच और पूर्वाग्रह होते ही हैं। एज की कामयाबी इसी में थी कि उन्होंने इन खामियों को पहचाना। उन्होंने वहां कीमत देखी जहां दूसरे नहीं देख रहे थे, जैसे ओबीपी में, और उन चीजों को नजरअंदाज किया जिन्हें ज्यादा महत्व दिया जा रहा था पर वे जीत में उतना योगदान नहीं करती थी,
जैसे चोरी किए गए बेस या दिखने में आकर्षक स्टाइल।
हाँ, तीसरा वस्तुनिष्ठता बनाम व्यक्तिपरकता, मतलब डेटा की ताकत।
ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है।
बहुत बड़ा। ये किताब इस बात का जबरदस्त प्रमाण है कि सब्जेक्टिव फैसलों के मुकाबले ऑब्जेक्टिव विश्लेषण कितना ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। स्काउट्स अक्सर खिलाड़ी की शक्ल सूरत, आत्मविश्वास से प्रभावित हो जाते थे। ये सब कॉग्निटिव बायस हैं।
सही बात है।
मनीबॉल ने इन पूर्वाग्रहों को दरकिनार कर सिर्फ उस चीज पर ध्यान केंद्रित किया जिसे मापा जा सकता था, मैदान पर प्रदर्शन। संदेश साफ था, अपनी भावनाओं पर नहीं, आंकड़ों पर भरोसा करो।
चौथा सबक है अंडरडॉग का हथियार, नवाचार, इनोवेशन।
हाँ, ऑकलैंड एज अमीर टीमों की तरह खेलकर उन्हें नहीं हरा सकते थे, उनके पास वो संसाधन ही नहीं थे।
तो उनका जीतने का एकमात्र रास्ता था खेल को ही बदलना।
बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे मुश्किलें और कमियां अक्सर रचनात्मकता और नए विचारों को जन्म देती हैं। जब आपके पास साधन कम होते हैं तो आप ज्यादा स्मार्ट बनने पर मजबूर होते हैं।
और पांचवा, जो शायद इन सबका निचोड़ है, प्रतिभा और सफलता की परिभाषा ही बदल देना।
हाँ, मनीबॉल ने सवाल उठाया कि प्रतिभा आखिर है क्या? क्या वो ताकतवर शरीर और सुंदर शॉट है,
या फिर वो कम आकर्षक लेकिन असरदार क्षमता जिससे आप आउट हुए बिना बेस पर पहुंच जाते हैं?
एग्जैक्टली। एज ने दूसरे विकल्प पर दांव लगाया। उनका लक्ष्य प्रतिभाशाली खिलाड़ी इकट्ठा करना नहीं था,
उनका लक्ष्य था जीत खरीदना।
हाँ, और जब लक्ष्य बदला तो टीम बनाने वाले की भूमिका भी बदल गई। वो सिर्फ मैनेजर नहीं रहा बल्कि एक एनालिस्ट, एक बाजार विश्लेषक बन गया।
किताब में कुछ ऐसी बातें या विचार हैं जो वाकई दिमाग में बैठ जाते हैं।
हाँ, कई हैं जो मनीबॉल के सार को पकड़ते हैं।
जैसे बिली बीन का वो मानना कि मेरा काम टीम को प्लेऑफ तक पहुंचाना है, उसके बाद ये काफी हद तक किस्मत का खेल है।
हाँ, ये पूरी मनीबॉल रणनीति का निचोड़ है। बीन समझते थे कि छोटे प्लेऑफ सीरीज में उलटफेर हो सकता है, भाग्य का रोल बड़ा होता है।
तो उनका लक्ष्य ऐसी टीम बनाना नहीं था जो दबाव में अच्छा खेले, बल्कि ऐसी टीम बनाना था जो लंबे सीजन में सांख्यिकीय रूप से सबसे बेहतर प्रदर्शन करे।
बिल्कुल, ताकि प्लेऑफ में जगह पक्की हो।
और वो छोटा सा वाक्य जो बार बार आता है, वह बेस पर पहुंच जाता है।
He gets on base.
हाँ, जब भी कोई पूछता कि बीन किसी मोटे, धीमे या अजीब से दिखने वाले खिलाड़ी में क्यों दिलचस्पी ले रहे हैं, तो अक्सर यही उनका जवाब होता था।
ये एक जटिल समस्या का क्रांतिकारी सरलीकरण था।
हाँ, बेसबॉल में जीत के लिए सबसे जरूरी और सबसे कम आंका गया कौशल था आउट ना होना, किसी भी तरह बेस पर पहुंच जाना।
एक और तीखी टिप्पणी जो स्थिति को सही दर्शाती है। समस्या यह नहीं थी कि एज के पास पैसा नहीं था, समस्या यह थी कि अमीर टीमों के पास बहुत ज्यादा था।
हाँ, ये बेसबॉल में मौजूद गहरी असमानता को दिखाता है। इस संदर्भ में देखें तो बीन का रास्ता बाजार की अक्षमता खोजना सिर्फ एक चालाक रणनीति नहीं थी,
बल्कि टीम के अस्तित्व को बचाए रखने की मजबूरी भी थी। सही कहा, उनकी भूमिका सिर्फ जीतना नहीं थी, बल्कि इस असमान सिस्टम में टिके रहना भी थी।
और शायद वो विचार जो पूरी मनीबॉल सोच को एक लाइन में समेटता है,
कि लक्ष्य खिलाड़ी खरीदना नहीं होना चाहिए, लक्ष्य जीत खरीदना होना चाहिए।
और जीत खरीदने के लिए आपको रन खरीदने होंगे।
बिल्कुल, ये उस बुनियादी सोच के बदलाव को दिखाता है जिसका नेतृत्व बीन ने किया। पारंपरिक मैनेजर खिलाड़ियों को उनके हुनर के आधार पर देखते थे, बीन उन्हें सांख्यिकीय नतीजे देने वाली इकाइयों के तौर पर देखते थे।
तो जब लक्ष्य बदला खिलाड़ी खरीदने से जीत खरीदने तक, तो उनकी भूमिका भी बदल गई।
हाँ बिल्कुल,
जैसा हमने शुरू में कहा था, मनीबॉल के सबक सिर्फ खेल के मैदान तक सीमित नहीं है, ये तो हमारी जिंदगी के कई क्षेत्रों में लागू होते हैं।
बिल्कुल, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट को ही लें, कंपनियां डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके ऐसे बाजार या ग्राहक ढूंढ सकती हैं जिन्हें कॉम्पिटिटर्स नजरअंदाज कर रहे हैं।
ये वैल्यू इन्वेस्टिंग जैसा है, ऐसी संपत्ति ढूंढना जिसका असल मूल्य उसके बाजार भाव से ज्यादा हो।
हाँ, सिर्फ आंकड़ों के आधार पर।
भर्ती और प्रतिभा प्रबंधन में तो इसका बहुत बड़ा असर हुआ है।
ओह हाँ, कंपनियां अब सिर्फ अच्छी डिग्री या इंटरव्यू में अच्छे प्रदर्शन से आगे बढ़कर उम्मीदवार के वास्तविक कौशल और प्रदर्शन के ऑब्जेक्टिव आंकड़ों पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं। स्किल टेस्ट, पिछले काम के नतीजे,
इससे न सिर्फ भेदभाव कम होता है, बल्कि ऐसे छुपे हुए हीरे भी मिलते हैं जो पारंपरिक खांचे में फिट नहीं बैठते हैं।
बिल्कुल, सही लक्ष्य यानी नौकरी के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति ढूंढना भर्ती करने वाले की भूमिका को बदल देता है।
यहाँ तक कि हम अपनी निजी जिंदगी में भी इसे लागू कर सकते हैं। अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाना।
हाँ, उन लक्ष्यों के पीछे भागने के बजाय जो दिखने में अच्छे लगते हैं या जिन्हें समाज में सफलता माना जाता है।
हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो वास्तव में हमारे लिए मायने रखती हैं और हमारे चुने हुए क्षेत्र में सफलता दिलाती हैं। ये पता लगाना कि हमारे जीवन का असली ओपीबी क्या है।
हाँ बिल्कुल, और भी कई क्षेत्र हैं। हेल्थ केयर में एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का सिद्धांत यही है।
हाँ, इलाज के फैसले सबूतों के आधार पर लेना।
सरकारी नीतियों में उन योजनाओं को प्राथमिकता देना जिनके सकारात्मक नतीजे मापे जा सकते हों। मूल सिद्धांत हर जगह एक ही है, किसी की प्रतिस्पर्धी माहौल में तर्कसंगत डेटा आधारित सोच से सिस्टम की खामियों का फायदा उठाया जा सकता है।
अपना लक्ष्य स्पष्ट करें और आपकी भूमिका अपने आप प्रभावी हो जाएगी।
बिल्कुल,
इस पूरी कहानी में मेरे लिए सबसे चौंकाने वाली बात शायद वो जबरदस्त विरोध था जिसका सामना बिली बीन को करना पड़ा, यहां तक कि अपनी ही टीम के लोगों से। स्काउट्स, मैनेजर्स सब उनके खिलाफ थे।
हाँ, ये सच है।
ये दिखाता है कि स्थापित व्यवस्था स्टेटस को बदलना कितना मुश्किल होता है, भले ही आपके पास अपनी बात साबित करने के लिए पुख्ता सबूत क्यों ना हो।
लोग अपनी पुरानी आदतों और विश्वासों से छिपके रहना पसंद करते हैं, ये इंसानी फितरत है शायद।
शायद। और आपके लिए सबसे बड़ा सबक क्या रहा?
मेरे लिए सबसे बड़ा सबक ये है कि सबूतों पर आधारित तर्क आखिरकार गहरी जड़ें जमा चुकी परंपरा, अंदरूनी आवाज और पूर्वाग्रहों पर जीत हासिल कर सकता है। ये हमें सिखाता है कि विशेषज्ञों की राय पर भी सवाल उठाना जरूरी है, खासकर तब जब वो डेटा से समर्थित न हो। और ये हमें वहाँ मूल्य देखने के लिए प्रोत्साहित करता है जहाँ दूसरे देखने की जहमत नहीं उठाते।
सही कहा, मनीबॉल सिर्फ एक खेल की कहानी नहीं है।
बिल्कुल नहीं, ये डेटा क्रांति का एक महत्वपूर्ण अध्याय है और यथास्थिति को चुनौती देने के लिए जो बौद्धिक साहस चाहिए उसकी एक मिसाल है।
ये हमें याद दिलाता है कि जब आप अपना लक्ष्य गोल सही तरह से परिभाषित करते हैं, जैसे जीत खरीदना, तो आपकी भूमिका भी स्पष्ट हो जाती है।
हाँ, यहाँ एक पारंपरिक मैनेजर से एक बाजार विश्लेषक और इनोवेटर बनना। तो शायद सोचने वाली बात यह है कि आज भी हमारे जीवन या काम में ऐसे कौन से अनदेखे ओबीपी हैं, कौन से ऐसे मूल्यवान आंकड़े हैं जिन्हें हम सिर्फ इसलिए नजरअंदाज कर रहे हैं क्योंकि वे पारंपरिक सफलता की तरह आकर्षक नहीं दिखते।
बहुत दिलचस्प सवाल है ये सोचने के लिए। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।